नर्सिंग आ रही हालत है आज नहीं नमस्ते नरसिंहाय
नमस्ते नरसिंहाय
प्रह्लाद लाज दायिने
प्रह्लाद लाज दायिने
हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलटन्कानकालरे इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः
इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः
यतो यतो यामि ततो नृसिंहाय
यतो यतो यामि ततो नृसिंहाय
परि नृसिंहारिदये नृसिंहाय
परि नृसिंहारिदये नृसिंहाय
नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे
नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे
नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे
नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे
अवकर कमलवरे नाका अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुबिंग केशवदिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
तव कर कमल बरे नाका मधुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुबिंगा केशवदिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव
जय नृसिंहदेव 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 जय
नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव
जय
नृसिंहदेव
नृसिंहदेव
नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज
जय प्रह्लाद
महाराज
प्रह्लाद महाराज
नरसिंहदेव भगवान की श्रीमणि प्रह्लाद महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राज भागवतम की समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रमा ओम नमः भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितांगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शतान्तिकम् वन्देयां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्यनयं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलतिकाशीविशतान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभारमूर्षे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरवभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेषाज्ञवादी पाश्चात्यदेशहारिणी
पिछले बार का रीडिंग असाइनमेंट हम करेगा वो रीडिंग असाइनमेंट लेके आयो आप लोग क्या थर्टीन का था ना इलेवन था है ना ओके तो आप लोग चेक कर सकते हो है ना खुद का खुद क्या पेन है ओके तो इट इज ऑन ध्रुव महाराज स्टोरी है ना स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज ठीक है द फोर ग्रेट कुमारस सेजेस हेडेड बाय शनक एज वेल एज नारद रिभु हंस अरुणी एंड यति ऑल सन्स ऑफ ब्रह्मा डिड नॉट लिव एट होम बट बिकेम क्या उर्धरेता और नैष्ठिक ब्रह्मचारी unadulterated celibates. Second, not finding any remedy, she, Suniti, said to her son, My dear son, don't wish for anything, what? Inauspicious for others. Anyone who inflicts pain upon others suffers himself from that pain. है ना ये हमने चर्चा किया लास्ट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इनऑस्पिशियस थर्ड माय डियर बॉय आई देयरफॉर विश ऑल गुड फॉर्च्यून फॉर यू यू शुड गो टू द बैंक ऑफ द यमुना वेयर देयर इज ए वर्चुअस फॉरेस्ट नेम्ड मधुबन एंड देयर बी प्यूरिफाइड फोर्थ व्हेन ध्रुव महाराज Thus captured the Supreme Personality of Godhead, who is the refuge of the total material creation and who is the master of all living entities, the three worlds begin to tremble. Fifth, Dhruva Maharaj in ecstasy looked upon the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes, kissing the lotus feet of the Lord with his mouth and embracing the Lord with his arms. तो ये हमने पहले और भी बहुत जगह पे है कि भगवान को जब दर्शन करते हैं तो devotees they embrace the Lord with their eyes or drinking the Lord's sweetness with their eyes. So ये जो eyes हैं है ना कई जगह पे पिछले भी और कई बार हम लोगों ने कि कैसे visually they used to embrace the Lord or take shelter of the Lord. So it's very important how we see है ना कैसे देखते हैं devotees जब भगवान को दर्शन करते हैं तो eyes are very important, you know. देखना है हमें पर क्या देखना है ना सो दिस ड्रिंकिंग द लॉर्ड्स नेक्टर विद आईज. सिक्स्थ, आफ्टर योर फादर गोज टू द फॉरेस्ट एंड अवॉर्ड्स यू द रूल ऑफ हिज किंगडम यू विल रूल कंटिन्यूअसली द एंटायर वर्ल्ड फॉर 36,000 ईयर्स एंड ऑल योर सेंसेस विल कंटिन्यू टू बी एज स्ट्रांग एज दे आर नाउ. You will never become old. ये benediction मिला. Then seventh, because of my state of complete foolishness and paucity of pious activities, although the Lord offered me His personal service, I wanted material fame, name, fame and prosperity. My case is just like that of the poor man who, when he satisfied a great
emperor
who wanted to give him anything he might ask, out of ignorance asked only a few broken grains of husked rice. 8. O best of brahmanas, I am very much addicted to
my
wife. And I am so fallen that I have abandoned all merciful behavior, even to my son, who is only 5 years old. I have banished him and his mother, even though he is a great soul and a great devotee. कौन कह रहा है ये?
उत्तानुपात
कह रहे. किसको कह रहे?
नारद.
When Dhruva Maharaj heard of the killing of his brother Uttama by the Yakshas in the Himalaya mountains, being overwhelmed with lamentation and anger, he got on his chariot and went out for victory over the city of the Yakshas, Kana Alkapuri. 10th, a person who desires liberation from this material world should not fall under the control of anger. Because when bewildered by anger, one becomes a source of dread for all others. Dread
means fear.
Fear or danger. Dread. Dreadful disease. Okay? Dreadful. Bhayana.
Bhayana.
Very important. Anger. So never exhibit. एंगर. कभी आपको याद है कभी एंगर आपने एग्जिबिट किया हो डिवोटीज के बीच में या कहीं बाहर भी? अच्छा. यस अमृत तिलक प्रभु कम मोस्ट वेलकम. सो इट्स वेरी केयरफुल. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल है ना एग्जिबिट. वी हैव टू बी धीर. एंगर का कॉज होते भी एंगर नहीं गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर सीइंग द लॉर्ड व्हेन ध्रुव महाराज कुड नॉट ऑफर प्रेयर्स व्हाट डिड द लॉर्ड डू. क्या गया? हाँ टच किया. हाँ और फिर ध्रुव महाराज बोलने लगे और ध्रुव महाराज के ऑकवर्ड सिचुएशन को भगवान समझ पा रहे थे है ना और उसको सोच के फिर ध्रुव महाराज कैसे ध्रुव महाराज के इस स्थिति से बाहर आ सके भगवान के पास सोल्यूशन इमीडिएटली होता है भगवान ने टच. तो भगवान की हर एक्टिविटी दिव्य होता है कब किससे कैसे करेंगे, इट इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल, है ना। तो ये था सेकेंड। डिस्क्राइब ब्रीफली द ऑस्टेरिटी परफॉर्म बाय ध्रुव महाराज, छह महीने में किस तरह से परफॉर्म किया, तो क्या कैसे लिखा है आपने, पहले महीने में क्या लिखा है, पहले महीने में
फर्स्ट मंथ ऑन एवरी थर्ड डे ध्रुव महाराज एट ओनली फ्रूट्स एंड
बेरीज। हाँ, फिर सेकेंड मंथ एवरी सिक्स डेज, है ना, ड्राई ग्रास एंड लीव्स। थर्ड मंथ वाटर इन नाइन डेज, है ना। एंड फोर्थ मंथ ट्वेल्व डेज, हाँ, थ्री करके थ्री करके थ्री डेज में उनका। फिफ्थ मंथ स्टूड इन वन लेग लाइक ए कॉलम। एंड सिक्स मंथ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड ब्रीदिंग,
सिक्स मंथ तो लिखा नहीं।
एंड प्रेस द अर्थ बाय हिज टो, नहीं लिखा, ठीक है आप दे दीजिए।
सिक्स मंथ के
कम्प्लीटली कंट्रोल द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कम्प्लीटली कंट्रोल कर दिया।
ब्रीदिंग कम्प्लीटली कंट्रोल मीन्स मतलब नो ब्रीदिंग,
हाँ नो ब्रीदिंग, ठीक है। वो एक्चुअली दोनों मिक्स था, अभी था एक तरह
से। क्लियर
हाँ वो ही नहीं है, मतलब आप उसको उसमें दो पार्ट था, तो पहले को आप फिफ्थ मान लो, उसके बाद सिक्स मान लो।
फिफ्थ में आपने कुछ और बताया था,
स्टूड इन वन लेग लाइक ए कॉलम, एक पाव में खड़े हो,
और क्या बताया,
और कुछ नहीं, बिल्कुल हिले ही नहीं हो, एक पाव में खड़े, जस्ट लाइक ए कॉलम जैसे।
ब्रीदिंग इन ट्वेल्व डेज ना,
हाँ,
ब्रीदिंग इन ट्वेल्व डेज लिखना जरूरी है कि नहीं, या फिर सिर्फ ब्रीदिंग लिखना जरूरी है।
ब्रीदिंग इन ट्वेल्व डेज इट फोर्थ मंथ में था ना,
हाँ,
ब्रीदिंग इन ट्वेल्व डेज,
हाँ,
ठीक है। व्हाई डिड ध्रुव महाराज फाइट विद यक्षस, क्यों यक्षस से लड़े,
उनके भाई
मार दिया, बस
मार दिया, और
साधारण नियम है पारिवारिक नियम,
बस उतना ही था। तो उसमें भी एक दो और थोड़ा सा डीप इनसाइट आपको लिखना है ना, कि भाई को मारा, हाँ, ये तो भाई उनको नहीं चाह रहे थे, उनकी अगेंस्ट में उनकी सौतेली माँ के भाई थे, लेकिन फिर भी उनका राजा की वो राजा थे, तो उनका कर्तव्य था कि उनकी सिटीजन को कोई ऐसे बिना कारण कोई मारे नहीं, तो इसके कारण भी उनको फाइट करना। और उनकी क्योंकि ही वॉज फ्री फ्रॉम एनवियसनेस, सो ही डिड नॉट बिकम हैप्पी टू हियर द सैड न्यूज ऑफ हिज ब्रदर, सो ही वॉन्टेड टू टेक एक्शन टू शो हिज लव फॉर हिज ब्रदर, टू गिव प्रॉपर जस्टिस टू हिज ब्रदर, डिड नॉट बिकम पार्शियल, ठीक है। What did Shayambhu Manu instruct while Dhruva Maharaj was fighting with the Yakshas? Shayambhu Manu क्या instruct किया बताइए आप?
Dhruva Maharaj को कहा है कि क्रोध करना नारकी जीवन का मार्ग है, अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो।
हाँ, सीमा से परे जा रहे हो, ये बात मानना था नहीं है, हाँ मारो ठीक है वो मानना था, लेकिन अब तुम सीमा से बाहर चले जा रहे हो।
यह बात अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य नहीं है,
हाँ,
नहीं हमारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है,
हाँ,
तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो,
हाँ,
तुमने यक्षता के कारण अनेक निर्देश निर्दोष यक्षों का वध कर दिया,
हाँ,
इसलिए अभी
बिल्कुल। तो ऐसे भी कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे आपका कोई जूनियर डिवोटी हो सकता है ना, कुछ गलती करते हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम लोग कभी डांटते हैं या कभी करेक्ट करते हैं, तो भी उतना ही करेक्ट करना चाहिए जितना मतलब रिक्वायर्ड, अधिक फिर जाना जरूरी नहीं है कि उस चीज को और समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, इतना है ना एक्सप्लेन करते रहो, अगर समझ में आ गया कि उनको समझ में आ गया, बस खत्म, मेन पर्पज सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर आगे, व्हेन ध्रुव महाराज वाज रिक्वेस्टेड टू गेट इनटू द एयरप्लेन ऑफ वैकुंठ, व्हाट डिड ही डू बिफोर बोर्डिंग, बिफोर बोर्डिंग वो बिफोर था अफ्टर था
डिवोटी थे
इसलिए
वो
एक मिनट रुको बोल रहे हैं सबसे पहले उससे पहले भी कुछ किया है उन्होंने क्या
साधुओं से
ओके ये तो वो बता रहे थे उसमें थोड़ा सा उससे भी पहले
जो डिवोटीज थे
हाँ स्नान किया वेरी गुड उन्होंने स्नान किया और उसके बाद और भी जो ऋषि थे और भी जो उनथे उन सबसे आशीर्वाद लिए उन्होंने फिर उनको प्रणाम किए जो भगवान की पार्षद आए थे और फिर एयरप्लेन को प्रदक्षिण किया और फिर उन्होंने वो जो आप बोल रहे हो मृत्यु का सर पर पाव रख दिया उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अपनी माँ के बारे
में कितना लिखना था
ठीक है मतलब ये कंप्लीट था उन्होंने क्या क्या किया अब उसमें से थोड़ा लिखा थोड़ा नहीं लिखा तो भी ठीक है दे दीजिए मेन यही है कि मतलब खुशी से वो भूल नहीं गया अपने टिकट्स को है ना कभी कभी हम खुशी से भूल जाते हैं यार हमने सब पा लिया अब जरूरत नहीं है तो एक एक चीज को उन्होंने ध्यान रखा है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है ओके दैट्स गुड कितना कुछ सीखने को मिलता है भागवतम से
टीचिंग इज दैट डोंट बी इंटॉक्सिकेटेड विद हैप्पीनेस
हाँ यस मैं ऐसे भी देख रहा था आप लोगों ने लिखा है काफी डिवोटीज ने तो हाँ मैं आज लगेगा आप लोगों का ना माइक्स दोपहर को वो स्ट्रेस प्रूफ करके लगाएंगे तो आप लोगों का कुछ कुछ रीडिंग में जो असाइनमेंट्स मेरे पास आया उन लोगों का मार्क्स तो मैंने दिया है अब हो सकता है कोई मेरे से मिस हुआ या कोई आपने ऑनलाइन भेजा ऑनलाइन भी जो भेजा वो भी मैं कंपाइल किया कोशिश किया अगर मेरे से मिस हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा कहीं मार्क्स होगा तो फिर शाम तक लगाएंगे वो अगर मिस हो गया तो मुझे बता दीजिएगा
टोटल परसेंटेज देंगे ऐसे और रिटर्न दोनों मिला करके या अलग अलग
नहीं अलग अलग ही देंगे अलग अलग हाँ हाँ टेस्ट का भी चेक ऑलमोस्ट हो गया है लेकिन टेस्ट का लेवल थ्री तक अभी लेवल मॉड्यूल टू तक ही अभी करेंगे आज
ऐसे मॉड्यूल वन का होगा अभी चेक होगा ठीक है
वो मतलब मैं जस्ट चेक कर रहा था हाँ मॉड्यूल वन का ही लगाएंगे अभी तो मैं चेक कर रहा था कहीं डिवोटीज ने अच्छा लिखा है उसमें चर्चा करेंगे और कि कैसे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि ग्लोरीज ऑफ भागवतम है ना तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था आप लोगों से और अच्छा तो आप लोग मतलब ये आप लोगों ने प्रयास तो किया जैसे मधुर माधव को काफी अच्छा ही किया है पर मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन और अच्छा था मेरे को लगा कि जी काफी अच्छा लिखेंगे तो वो था और पर मुझे काफी क्या किसको बोलूं मैं बलि प्रसाद कुल का मैंने देखा काफी अच्छा था उसमें है ना आपका हैंडराइटिंग काफी अच्छा है मधुर माधव कुल का और लेकिन बलि प्रसाद कुल का मैंने देखा जो चीज मतलब होना चाहिए लगभग वो रखा है उसमें इट इज गुड एंड काइंड ऑफ वी कैन लर्न हाँ मतलब ये मैं एक जस्ट बताता हूँ कि जिसे हम लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे का उसमें हमने डिवीजन भी रखा है कि ऐसे मार्क्स का तो था इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन दोनों का था 10% करके 20% शायद दोनों मिलाकर कि जरूरी नहीं हर समय इंट्रोडक्शन भी हो और कंक्लूशन भी हो सकता है कभी इंट्रोडक्शन छोटा हो जाए कंक्लूशन बड़ा हो जाए तो दोनों मिला के रखा है फिर फिलोसॉफी था फिलोसॉफी उसके बाद उस फिलोसॉफी को प्रेजेंट कैसे करते हैं है ना उसमें मेन मार्क्स था फिलोसॉफी को था और करे राइट फिलोसॉफी और राइट फिलोसॉफी को प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट मतलब इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए दैट इज द मेन थिंग उसके बाद फिर श्लोका कोटेशन एंड एग्जाम्पल कोटेशन है ना उसके बाद हैंड राइटिंग तो हैंड राइटिंग तो ओके ओके टाइप है पर जिसे अभी अगर बोले कि देखो इंट्रोडक्शन है ना तो वो भी उन्होंने लिखा है भागवतम कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रभु जी का भागवत Bhag means Bhagwan or Krishna and Vat means just like. थोड़ा interesting लग रहा है ना. So Bhagavatam is just like Bhagwan or it's also defined as literary incarnation of Krishna. तो इस ठीक है थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना मतलब अपने अंडरस्टैंड करके ऐसे को अपनी लैंग्वेज में लिखना है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो ऐसे मीन्स आप अपनी लैंग्वेज से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है इट्स नॉट जस्ट कहीं से उठाया और कहीं डाला ठीक है फिर
दिस इज नहीं
हाँ ओके मैं डिटेल तो नहीं पढ़ूंगा पर अब हमारा मेन था कि भागवतम का ग्लोरी सामने कि भागवतम से क्या हमें बेनिफिट होता है या कितना ग्लोरियस किसी ने डिस्क्राइब किया हुआ है तो उसमें जो है ना कई डिवोटीज ने लिखा है कई डिवोटीज ने कहीं भागवतम का ही कोई कोट उठाया और श्लोक को एज इट इज लिखा है कि उन डिवोटीज कह रहे हैं कि भागवतम इज माय लाइफ एंड इस तरह से मतलब भागवतम का श्लोक पर थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंटली लिखा है कि एग्जाम्पल का भी जैसे आया तो बहुत कम ही डिवोटी ने भागवतम में कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि ग्लोरीज में क्या एग्जाम्पल हो सकता है ग्लोरीज और भागवतम उसमें क्या एग्जाम्पल हो तो उन्होंने लिखा है यद्यपि ये सेम ही है मतलब श्लोक सही है पर इन्हें एग्जाम्पल की तरह लिखा है जस्ट लाइक इन ए मैंगो ट्री द नेक्टर कैन ओनली बी रिलीज्ड बाय ईटिंग द फ्रूट ऑफ द ट्री एंड नॉट बाय अदर पार्ट्स ऑफ द ट्री All the fruit is derived from the tree itself. तो ये जो फ्रूट है मैंगो फ्रूट है वो ट्री से ही आता है लेकिन उसका नेक्टर कोई रिलीज कर सकता है मैंगो को खा के ट्री का कोई और पार्ट से नहीं उसी तरह वैदिक लिटरेचर वेदर्स इज कंसिडर्ड एज ए डिजायर फुलफिलिंग ट्री बट द रियल रिलीशियबल फ्रूट इन ऑफ द वेदर्स इज भागवतम तो वेद को विच कैनॉट बी रिलीज बाय रीडिंग अदर एरियाज ऑफ द वेदर्स ठीक है ऑल द श्रीमद भागवतम और फिर उन्होंने कोट लिखा निगम कल्पतरु गलितम फलम तो इट्स ए वेरी नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन की है ना किस तरह से एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और फिर श्लोक भी कोट कर रहे हैं एकदम वेरी रेलिवेंट श्लोक को उस जगह पे कोट कर रहे हैं इट्स नॉट की मतलब कोई भी श्लोक उसके बाद फिर भी लिखे था है ना कैसे भागवतम की जो ग्लोरीज है और बढ़ जाता है हाउ दिस ग्लोरीज ऑफ भागवतम इज मोर मैग्निफाइड व्हेन इट इज रेड इन किस तरह से अगर भागवतम का स्टडी किया जाए तो फिर उन्होंने लिखा कि इन द एसोसिएशन इफ व्हेन इट इज हर्ड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द भागवतम है ना और बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु तो फिर उन्होंने कोट किया वो जो चैतन्य जो भागवत का जो वो है कि जाओ भागवत को पढ़ोगी या वैष्णव स्थाने है ना एकांत आश्रय करो चैतन्य तो उस लोग को उस हिसाब से कोट किया इट्स गुड फिर लिखा है कि फिर उस भागवतम का जो इस तरह से जब स्टडी करते हैं देन व्हाट विल बी द बेनिफिट जस्ट ही मतलब किस तरह से सिस्टमेटिकली एक के बाद एक चीज मतलब हो रही है कि भागवतम की ग्लोरीज ही है पर ग्लोरीज की डिफरेंट स्टेज वाइज बता रहे हैं कि एक तो भागवतम की का नेचर बता रहे फिर हाउ टू स्टडी इट एंड फिर उस स्टडी करने से फिर क्या बेनिफिट है फिर वो लिखते हैं कि क्या है नित्यम भागवत सेवा है ना और फिर जो है हृदय तो आई एम जस्ट सेइंग मतलब दिस वे है ना इट वाज नाइसली प्रेजेंटेड आल्सो एंड इन ए वेरी इन ए ओन लैंग्वेज इट वाज प्रेजेंटेड तो ऑफ कोर्स बाकी डिवोटीज ने भी अच्छा लिखा जस्ट आई थॉट कि मतलब बताएं तो अच्छा तो एग्जाम्पल कोट श्लोक उस रेलिवेंट आता है तो अच्छा ठीक है ओके और पिछली बार ये रीडिंग असाइनमेंट्स जब टेस्ट चेक कर रहे थे तो हम अब्दुल मिठाईपुर को ही बोला कि प्रभु जी थोड़ा मेरा हेल्प कर दो तो कर रहे तो बोल रहे प्रभु जी एक एक पेपर चेक करने के बाद उस बेस का और चेक करने की जरूरत नहीं है बोले क्यों बोले सबका सेम ही होता है उस बेस के एक एक वर्ड किसी ने अगर स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक सब में मिलेगा आपको वो हंसने लगे जब भी किसी और का देखो मुझे एकदम सेम है सीटी सीटा. ओके ठीक है. तो दिस ऑल्सो गुड फॉलोइंग एज इट इज. ओके ठीक है. तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज. तो हमने सुना है अभी टेंपल में है ना. तो कल भी यहाँ पे आया था हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज की ग्लोरीज अनलिमिटेड है. उसमें एक ग्लोरीज है प्रहलाद महाराज वाज फियरलेस ना? फियरलेस किसी भी स्थिति में. और उसी तरह श्रील प्रभुपाद वाज ऑल्सो फियरलेस. जो प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर में कि प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स में कि इस संसार मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर है एंजाइटी. तो वी रिमेन फुल ऑफ एंजाइटी सदा समुद्विग्न धिया. ये एक श्लोक है प्रहलाद महाराज के कि समुद्विग्न धिया. इतना एंजाइटी इतना स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं हम लोग कि नींद भी नहीं आता है सदा हर समय उद्विग्न एंजाइटी में रहते. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम अगर बेटर पोजीशन प्राप्त कर लेंगे तो एंजाइटी कम हो जाएगा. और इसलिए हम प्रयास करते हैं कि एंजाइटी को कम करने के लिए थोड़ा बेटर पोजीशन प्राप्त हो जाए ऑफिस में या घर में या किसी भी स्थिति. लेकिन वो एंजाइटी कभी कम नहीं होता है. वो कहते हैं कि ये किसी भी इवन ब्रह्मा जी का स्टेज तक जो हाईएस्ट पोजीशन है वर्ल्ड में वो इज आल्सो फुल ऑफ एंजाइटी स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू ब्रह्मा जी फुल ऑफ एंजाइटी एंड दैट इज द मटेरियल वे ऑफ लाइफ एंजाइटी. एंड स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स एंजाइटी लेस लाइफ. प्रभुपाद कहते हैं तो बोलते हैं कि एंजाइटी का मीनिंग कॉज क्या है कि सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रह. एक ही बात है लेस मतलब विदाउट एंजाइटी. जब आप उसके साथ लेस लगा देते हो लेस एंजाइटी करोगे तो फिर कम एंजाइटी. पर एंजाइटी लेस कर दिया दैट मीन्स विदाउट एंजाइटी. तो क्यों? क्योंकि असत ग्रह असत जो टेम्पररी चीज को हमने ग्रहण किया हुआ है इसलिए उद्विग्न सदा उद्विग्न रहता है. ये कॉज. तो जो जिन्होंने सत को ग्रहण किया हुआ है या शेल्टर लिया हुआ है कृष्ण की पूर्ण शेल्टर लिया हुआ है ओनली ही कैन बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी. एंड जो प्रहलाद महाराज थे हमारे जो भी प्रभुपाद थे तो इस तरह हमने पढ़ा था शुरू में कि भागवतम में जो साइंस जो उन्होंने बनाया था ब्रह्मा जी ने तो उसमें एक है फियर. तो हम सब फियरफुल है तो लेकिन हम चाहते हैं सब फियरलेस हो. ये तभी संभव होगा. वी कैन प्रे टू प्रहलाद महाराज कि हाउ वी कैन बी मोर एंड मोर डिपेंडेंट एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण एंड दैट वे ओनली वी कैन बी फियरलेस. अदरवाइज वी हैव फियर ऑफ लूजिंग फियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हमारा रिलेटिव हमारा बॉडी हमारे अटैचमेंट के कारण बॉडी रिलेटिव धन ये फियर. व्हाट इफ इट हैपेंस. ठीक है. तो वी कैन प्रे टू प्रहलाद महाराज टू गिव अस स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियसनेस सो दैट वी कैन टेक रिफ्यूज एट द लॉटस फीट ऑफ कृष्ण.
जैसे एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आती और अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो सिचुएशन
वो फिर इग्नोरेंस है तमोगुण है. जितना रिक्वायर नहीं आता वो भी टाइम वेस्ट है. अगर नींद नहीं आ रही है देट इज ऑल्सो योर वेस्टिंग योर टाइम. ज्यादा आ रहा है देन ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम नॉट एबल टू यूटिलाइज इन कृष्ण सर्विस प्रॉपरली.
इसमें एंग्जाइटी का कोई रोल नहीं है.
इसमें जो नहीं नींद ज्यादा आ रहा है उस केस में उस केस में एंजाइटी है बट ही इज कवर्ड बाई इग्नोरेंस. जैसे इग्नोरेंस से जगेगा
इग्नोरेंस की कृपा है महसूस
वो एंजाइटी उसको फील होगा और वो बहुत ज्यादा ढंग से फील होगा, खतरनाक ढंग से फील होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, किंग वेना एंड पृथ्वी महाराज। तो थोड़ा
चैप्टर कौन सा?
हाँ, चैप्टर है आपका 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
इतना हो जाएगा?
22, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए तो 2 वीक्स है ना आप लोगों के पास, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर। एंड 23।
L5 में कहाँ तक है?
4th कैंटो तक है।
फोर्थ
कैंटो पूरा,
टोटल 4th कैंटो तक कितना चैप्टर है?
एक क्लास नहीं, दो क्लास और, हाँ एक क्लास हमारा मिस हुआ है, ऐसे दो क्लास है, तो वो दोनों छोटे छोटे ही हैं। तो उसमें क्या है, अब ध्रुव महाराज का डिसेंडेंट्स के बारे में वर्णन हो रही है, तो उसमें डिसेंडेंट्स के बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उसमें आगे जाके आते हैं एक राजा जिनका नाम है अंग, हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो विदुर इंक्वायर्ड फ्रॉम सेज मैत्रेय, माय डियर ब्राह्मण, किंग अंग वाज वेरी जेंटल, ही हैड हाई कैरेक्टर एंड वाज ए सेंटली पर्सनैलिटी एंड लवर ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, हाउ इज इट दैट सच ए ग्रेट सोल गॉट ए बैड सन लाइक वेना, बिकॉज ऑफ हुम ही बिकेम इनडिफरेंट टू हिज किंगडम एंड लेफ्ट इट। प्रोपा तात्पर्य में लिखते हैं, तो ये स्टोरी आपको पता होगा कि तो अंग जो है राजा थे और ध्रुव महाराज की वंश परंपरा में आते हैं, और उनके कोई सन नहीं थे, है ना, कोई संतान नहीं थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, उनकी जो वाइफ थे वो थे उनकी कन्या, मृत्यु की कन्या थी, तो शायद मृत्यु की कन्या थी, और तो वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं थे, तो फिर उन्होंने यज्ञ किया और उसके बाद जो है उनको जो भी यज्ञ में जो है उनको वो प्रसादम मिला, वो उनके अपनी वाइफ को प्रदान किया, और उससे उनका एक बाद में पुत्र का जन्म हुआ, और उनके पुत्र का नाम था वेना। तो बचपन से वो जो वेन राजा थे, वेन थे, वो काफी वो दुष्ट प्रकृति, तो यही प्रश्न कर रहे हैं कि राजा तो इतना अच्छा थे, अंग राजा एक राजर्षि थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर के थे, तो उनके पुत्र ऐसे कैसे हुए, जो कि अनलाइकली है ना। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, इन फैमिली लाइफ ए मैन इज सपोज टू लिव हैप्पीली विथ फादर मदर वाइफ एंड चिल्ड्रन, बट समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशंस ए फादर मदर चाइल्ड और वाइफ बिकम्स एन एनिमी। इट इज सेड बाय चाणक्य पंडित दैट अ फादर इज एन एनिमी व्हेन ही इज टू मच इन डेट। ऋणी पिता, पिता जनरली बेनिफेक्टर होते हैं, पर अगर वो पिता बहुत ऋण करके रखा है ना, जो पुत्र को चुकाना पड़ता है ना, तो पिता इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी। देन मदर, तो कौन सी मदर एनिमी है? ए मदर इज एन एनिमी इफ शी मैरिज फॉर ए सेकेंड टाइम, जो अपने फादर को छोड़ के मतलब अपनी हस्बैंड को छोड़ के वो किसी और के साथ उनका रिश्ता होती है, तो ऐसे मदर जो है वो शत्रु है। फिर ए वाइफ इज एन एनिमी व्हेन शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड सुंदरी भारिया एंड ए सन इज एन एनिमी कब व्हेन ही इज ए फुलिश रास्कल। In this way, when a family member becomes an enemy, it is very difficult to live in family life or remain a householder. Generally, such situations occur in the material world. Probably, generally it occurs. Therefore, according to Vedic culture, one has to take leave of his family members just after his 50th year, so that the balance of his life may be completely devoted in search of Krishna consciousness. तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब है ना कितना भी है ना अब उनके जो पुत्र जन्म हुए हैं तो कभी सोचे क्या कि मेरा पुत्र ऐसा होगा करके, तो कभी ऐसे सोचे नहीं है ना। वो क्या सोचे होंगे मेरा पुत्र अच्छा होंगे है ना, कि मैं इतना अच्छा रिलीजियस हूँ इतना वो, तो हर कोई हम सब ड्रीम देखते हैं सपना देखते हैं है ना मेटेरियल वर्ल्ड में, और हम सोचते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे और वो बेस्ट होना चाहिए हमारा होगा। हर कोई जैसे मान लीजिए मैरिज करता है तो इनफैक्ट जब मेटेरियलिस्टिक लोग हैं दे ऑल्सो प्लान मैनी थिंग्स, नहीं मैरिज से पहले ही दे डू सो मच प्लान कि मैरिज के बाद कहाँ जाएंगे है ना, हनीमून में जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, दिस सी सो मेनी ड्रीम्स है ना कि ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, एंड दे रिमेन वेरी हैप्पी कि है ना, तो दे फील कि मतलब अभी जो दुख है हमारा है ना वो अभी एंड होने वाला है और अभी जो न्यू लाइफ होने वाला है दैट विल बी ए वेरी हैप्पी लाइफ है ना, एंड इट्स अ फैक्ट हर कोई है ना आशा देखता है। तो मेटेरियलिस्टिक पीपल जो है दे ऑल्सो ड्रीम लाइक दैट, एंड डिवोटीज ऑल्सो दे ऑल्सो ड्रीम एंड दे ड्रीम इन ए लिटिल डिफरेंट वे है ना, कि मेरा फैमिली विल बी वेरी आइडियल हाउस होल्डर गृहस्थ लाइफ है कि नहीं, एवरी डे मॉर्निंग विल गो टू मंगल आरती है, and we see also you know in the temple after marriage immediately you will find like you know sometimes devotees tries and initial days they come also like you know mangal aarti every morning, it's very nice, but so this way they want like every devotees want that yes my life my family will be ideal, yes the life wife will be so much nice devotee, my every family members will be you know serving Krishna nicely, serving Guru nicely, will be happy, just the life. But it doesn't happen. In most many cases, very rare case maybe one, but in many cases, most of the cases, it doesn't happen. Prabhupada said that. And so we should be prepared for that. We should hope for the best, but prepared for the worst, है ना? Then we will not be frustrated. You should know the reality. ठीक है? अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर in our heart there will be no hankering for shelter of Krishna or mercy of Krishna. If everything goes as per our dream. And this is what it is. So happened to King Anga. So फिर आगे लिखते हैं आगे आता है since the king was very liberal, the Supreme Personality of Godhead, in order to increase his detachment from this material world, willed that a cruel son be born of the queen, so that the king would have to leave home. So Lord Vishnu fulfills the desires of the karmis as they desire. But the Lord fulfills the desire of the devotee in a different way, so that the devotee may gradually come to him. Sometimes it becomes difficult for us to accept what Krishna gives us. Sometimes, no? So devotees, they are able to see. Anything that Krishna gives, they are able to see that it is the mercy of Krishna. Yes. So they try, Vedanta. Yes. Are you throw aside away?
Aage aage.
So wo prayas karte hain. पर उसके बाद जो कृष्ण की इच्छा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. ऐसे नहीं कि वो प्रयास नहीं करते हैं चीज को, बिना प्रयास करके ही सोचते हैं कि जो भी है वो कृष्ण की मर्जी है. वो प्रयास करते हैं उस चीज को सही ढंग से करने के लिए, सबको कृष्ण की सर्विस में लगाने के लिए. लेकिन उसके बाद भी एक लेवल तक के बाद उनके हाथ में नहीं होता है, तो वो समझते हैं कि कृष्ण इज डिजायर. तो लिखते हैं, दैट बॉय वॉज बॉर्न पार्शियली इन द डायनेस्टी ऑफ ई रिलीजियन. ओके, हिज ग्रैंड फादर, लाइक उनकी जो वाइफ की पिता थे, वो डेथ पर्सनिफाइड, एंड द बॉय ग्रीव अप एज हिज फॉलोअर. ही बिकेम ए ग्रेटली ई रिलीजियस पर्सन. उनकी वाइफ की पिता, उनकी फादर इन लॉ, जो अंग का फादर इन लॉ वॉज डेथ पर्सन, इसलिए अंग का वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट गुड. ये फिर पद लिखते हैं उसमें, इसीलिए शादी से पहले देख लेना चाहिए कि उनकी जो दोनों फैमिली का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए.
बैकग्राउंड मैरिज ब्यूरो नहीं था.
लेकिन अगर हैवी
तब भी हो सकता है,
तुम देख सकते हो, तुम बाहर से देख सकते हो, तुम हर चीज को नहीं समझ सकते हैं. जब नहीं, वो जो हम पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे, कली, फिर उनका मृत्यु, इस तरह से जो वर्ण हो रहे थे जी ब्रह्मा जी के कई सारे, तो उस तरह से उनका नाम था मृत्यु, जैसे भयानक खतरनाक थे व्यक्ति.
भय वगैरह तो पूरा लीनियज आ रहा
था. हाँ, उसका एक अलग से लीनियज है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए. ठीक है, ओके.
अधर्म की जो ब्रह्मा के अधर्म,
हाँ,
उन्हीं का
लीनियज. ठीक है, तो इस तरह से according to Vedic civilization, therefore, before the marriage takes place, an account is taken of both the boys and girls' families. If according to astrological calculation the combination is perfect, then marriage takes place. Sometimes, however, there is a mistake and family life becomes frustrating. Prabhupada said. So, itna kuch karne ka baad bhi, there is a mistake. Oh, ho hi sakta hai. Or, and then, wo mistake jo hai, ये हमें समझ रहे कि वी आर ऑल प्रोन टू मिस्टेक्स.
जैसे नरकासुर भी थे ना, ये बड़ा देव का पुत्र थे, बाद में असुर बन गए.
तो ज्योतिषी का मिस्टेक हो सकता है, हमें जो चीज को समझने में मिस्टेक हो सकता है ना. और
कह नहीं सकते भगवान का पुत्र असुर बन गया
था वो कृष्ण डिजायरी
क्या
लेकिन कृष्ण डिजायरी होता होगा
कृष्ण के ऊपर ठोक रहे हैं डीजल
ऐसी तो कुछ मिलता नहीं है किसी
हाँ, तो अगर आप डिवोटी हैं तो आप उस चीज को देख सकते हैं हो सकता है कृष्ण ऐसे ही करेंगे
कर्म फल
आपको ऐसे ही क्या आप मान लीजिए ना इन अट्रैक्टेड टू ए गर्ल फॉर एग्जांपल अट्रैक्टेड टू वूमेन तो जब तक आपका डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका वो अट्रैक्शन जाएगा नहीं आपका हृदय से तो इसलिए हो सकता है कृष्णा ऐसे करेंगे कि आपका डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाए देन यू विल नो मोर अट्रैक्टेड टू
उडन बता कम हो जाएगी तो
है कि नहीं तो दीज आर वेरी समटाइम्स कृष्णा एक महाराज का वो था कोट था कि अर्लियर आई यूज टू प्रे टू कृष्णा प्लीज प्यूरिफाई मी Now I pray, please purify me softly.
Softly.
So it's true. कि जब तक वो नहीं रहता एक्सपीरियंस तब तक वो सब डिजायर्स हार्ट से जाता नहीं है उसके लिए अलग अलग मतलब तरीका है चीज को दूर करने का तो कोई तो सुन के ही भगवान की नाम सुन के ही उनका दूर हो जाता है भगवान की प्रति हरि नाम से ही दूर हो जाता है किसी के लिए वो चाहिए होता है एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो यहाँ पे राजा अंगकस आते से हैं और तो पॉइंट ये है कि उसमें भी प्रभुपाद आगे लिखते हैं कई सारे ना जब उसमें स्टोरी आता है तो उसमें लिखते हैं कि पुत्रहीन फैमिली लाइफ इज शून्य गृहम शून्य पुत्रहीन है गृहम शून्य ये भी चाणक्य पंडित कहते हैं कि गृह में पुत्र होना चाहिए है ना एक फैमिली लाइफ में पुत्र होना चाहिए है ना आइडियल है और नहीं है तो गृह एकदम शून्य की तरह है उसी में आता है विद्याहीन जीवन शून्य तो ये जीवन में अगर विद्या नहीं है तो ये जीवन शून्य है लेकिन फिर आगे जाकर कहते हैं कि ऐसे पुत्र जो बहन जैसे पुत्र वो तो है ना जिनका बहन अंग कह रहे हैं कि जिनके पुत्र नहीं है दे आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या सही है क्या कौन फॉर्चुनेट है समझना मुश्किल है कि नहीं
पढ़े लिखे
हाँ फॉर्चुनेट है तो उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली एक लेक्चर में कि भद्र भद्र इस मेटेरियल वर्ल्ड में भद्र भद्र दोनों ही जो है इनऑस्पिशियस किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है अनलेस अंटिल वन कम्स टू प्योर लव ऑफ कृष्ण तो भद्र अभद्र दोनों ही भाष्य के लिए अभद्र है इस मेटेरियल वर्ल्ड में जैसे हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं आशीर्वाद दीजिए तो वो आशीर्वाद भी एक तरह से क्या हो जाता है कर्ज हो जाता है
भौतिक आशीर्वाद है
ना भौतिक आशीर्वाद अगर वो भद्र मेरे को अभद्र मतलब इनऑस्पिशियस दोनों ही क्या है इनोस्पी अभद्र ही है इस संसार मेटेरियल वर्ल्ड तो वो मेटेरियल मेटेरियल नीति वाक्य है चाणक्य का है ना तो फिर उसमें ही बात कर रहे हैं ना कि जब ट्रांसेंडेंटल स्टेट में आते हैं जब डिवोशनल लाइफ में आते हैं तो आपकी वो उसके ऊपर मैटर नहीं करता है कि आपका अभद्र भी है आपकी जीवन शून्य भी है फिर भी जीवन इज फुलफिल क्योंकि आप कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है कि नहीं और अगर आपका जीवन पूर्ण भरा हुआ है लर्नेड लर्निंग से तो भी आपका सक्सेसफुल है अगर आप कृष्ण को प्रसन्न कर लिया और दोनों ही अगर दोनों तरह से आप कृष्ण को नहीं प्रसन्न कर पाए तो फिर दोनों से कोई फायदा नहीं
घर हरा भरा है
ठीक है ना
तो लेकिन अगर कृष्ण मन से विचलित हो रहा है तो वह अभद्र बन गया।
हाँ बिल्कुल, तो ये चीज जो है ये एक डिवोटी उसको अच्छे से समझता है। तो ही इज नॉट वेरी मच काइंड ऑफ कंसर्न्ड विद दिस। अब अगर किसी ने सुन लिया चाणक्य नीति घर सुनना सोचेगा फिर तो ही विल बी एंजाइटी है, लेकिन मेरा गृह शून्य कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाउ टू मेक माय गृह फुल, है ना, ही विल बी एंजाइटी, है ना। तो कि सिर्फ फुल करने से ही जो कृष्णा विल बी प्लीज्ड और मेरा लाइफ विल बी सक्सेसफुल इज नॉट नेसेसरी, है ना। तो क्या अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? तो कभी कभी ऐसा होता है डिवोटी कभी कभी दूसरे से इसको सुन लेते हैं, कोई बोलते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल एंड दिस इज होप्स एंड दे बिकम डिस्टर्ब। मुझे किसी ने मेरे को पहले बताया नहीं, मुझे मेरे को किसी ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया या कुछ ऐसा कुछ ऐसा, दे थिंक लाइक दैट और हमारे कॉन्शियसनेस हमारे डाउन हो जाते हैं एंड वी समटाइम बिकम डिप्रेस समटाइम, पर अल्टीमेटली हमें तो उसके आगे बहुत सारे इस तरह से नीति वाक्य है कि नहीं। तो मेन जो है वो यही है कि अगर कृष्ण इस प्रसन्न हो गए देन एवरीथिंग इज फुलफिल्ड, है कि नहीं। कि श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर। एंड ए डिवोटी में ऑल्सो थिंक कि व्हाट इज आई एम ए कांगाल, है ना, आई एम तो मेरा घर शून्य ही है और क्या है, यही क्या भरने का भी शक्ति क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरा घर शून्य है या मेरा लाइफ शून्य है, मेरा जीवन शून्य है, विद्याहीन मेरा जीवन शून्य है, विद्या है ही नहीं, तो है ही नहीं, सो आई एम निष्किंचन अकिंचन, ओनली होप इज कृष्ण। So he takes it that way. He takes whatever Krishna's desire is coming and he is not very much think too much into how to make that materially kind of fulfill. Whatever is coming in his own way by Krishna's mercy, he is able to handle that. उसमें आगे की कथा भी आता है आगे भागवत में, महाराज कई बार लेक्चर में बताते हैं गुरु महाराज कि हर्ष शोक का कथा आता है कि एक व्यक्ति का संतान हो नहीं रहा था और फिर वो बहुत दुखी थे, तो फिर उन्होंने कहा कि एक संतान होंगे जिनका नाम होगा हर्ष शोक, क्योंकि वही हर्ष का कारण होगा और वही दुख का कारण होगा शोक का कारण। तो मेटेरियल वर्ल्ड बेस्ट में ऐसे ही है ना, तो हम जिसके कारण कभी दुख होते हैं सुखी होते हैं वही दुख के कारण, मेटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, ठीक है ना।
तो एक चीज पूछना है, जितने भी राजा होते हैं जिनके पुत्र नहीं होते तो वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पुत्र हो जो उनको मतलब जो बाद में पित्री करके वो उनको डाल दे, तो ये मटेरियल लेवल पे
नहीं, नहीं उसके और भी चाहिए, कई सारे कारण होते हैं, ये भी होते हैं राज्य आगे कौन योग्य डिसेंडेंट होना चाहिए राज्य को बाहर संभालने के लिए, है ना, वो भी होता है, ये कारण भी होता है कि राज्य संभालने वाला कोई होना हो नहीं, है ना, तो उसके लिए भी एंजाइटी होता है। तो डिफरेंट डिपेंड करता है क्या कॉन्शियसनेस पे वो सोच रहे हैं।
उस बेस पे जो चाणक्य नीति है कि पुत्र होना चाहिए तो वो भी
वो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के लिए है,
वो मटीरियल
साधारण लाइफ
के लिए है ना, वो साधारण लाइफ के लिए एप्लीकेबल, ठीक है।
पुत्र
पुत्र का ही बात करते हैं,
अब तो लड़ाई उत्तर पुत्र और पुत्र के बीच में
मेहरबान का ही बात करते हैं यहाँ पे तो है कि नहीं। सो दोज हु आर वेरी फॉर्चुनेट, सो लाइक दैट है ना, अंग महाराज अंग का ऐसा हुआ, फिर आगे जाके फिर हम पढ़ते हैं। अब महाराज अंगद किए क्या उनको, है ना, शुरू में जब वो नॉटी थे उसमें आ गए। द बॉय वॉज सो क्रुएल दैट After fixing his bow and arrow, the cruel boy used to go to the forest and unnecessarily kill innocent deer. And as soon as he came, all the people would cry, "Here comes cruel Vena! Here comes cruel Vena!" सब जो है उससे भयभीत थे। छोटा बच्चा था, हाँ, उसी से कुछ भी कर देता था। The boy was so cruel that while playing with young boys of his age, he would kill them very mercilessly. As if they were animals meant for slaughter. After seeing the cruel and merciless behavior of his son Vena, King Anga punished him in different ways to reform him. तो उसने प्रयास किया उन्होंने, ऐसे नहीं कि मतलब है ना हुआ और वे सारी चीज सोच लिया कि भगवान की कृपा। उनको मिला इनसे माई रेस्पॉन्सिबिलिटी to guide, to make him a devotee. तो किंग अंग ने प्रयास किया, है कि नहीं? तो ऐसे होता है, आपके बेस में भी होंगे यार, जो भी डिवोटी आ रहे हैं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन देम, टीच देम हाउ टू सर्व कृष्ण, हाउ टू बिकम ओबीडियंट, हाउ टू, तो बेस्ट हमें प्रयास करना है ऑफकोर्स। बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिम टू द पाथ ऑफ जेंटलनेस। He thus became greatly aggrieved. बहुत दुखी हो गया, और क्या कर सकते, he cannot blame him, he cannot blame to the Lord, he can be only aggrieved, दुखी he, ऐसा हुआ, हम अनएक्सपेक्टेड था, तो उन्हें ऐसा हो गया, क्या किया जाए। The king thought to himself, persons who have no son are certainly fortunate. They must have worshipped the Lord in their previous lives so that they would not have to suffer the unbearable unhappiness caused by a bad son. ठीक है, तो इस तरह से वो सोचने लगे एंड फिर आगे जाके फिर वो सोचने लगे, a bad son is better than a good son. Because a good son creates an attachment for hope, whereas a bad son does not. A bad son creates a hellish hope from which an intelligent man can naturally becomes very easily detached. देखिए, देखने का नजरिया है, विजन है। A devotee can see, जैसे लेक्चर में अमोक लीला प्रभु भी कह रहे थे कि for devotee's life every dark side has a bright side. And materialistic life, every dark side has a bright side, is a dark side. So devotee life में कितना भी कुछ खराब हो जाए, हर सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वो ढूंढ लेते हैं कि ये चीज कृष्ण ने दिया है मेरे लिए, एंड ही रिमेन्स हैप्पी।
लेकिन मुझे इसमें एक प्रश्न आता है, जैसे राजा बहन जैसे बाद में उन्होंने अपने पुत्र को देख के चले जाते हैं वन में, तो ये तो उन्होंने अपने पुत्र को क्यों दिया जब उनको पता था कि डिस्क्वालिफाइड है?
उन्होंने अपने पुत्र को दिया नहीं, अब ये बात है, तो उन्होंने इतना एग्रीव्ड हो गया और सोचे कि इस जिस फैमिली में को मैंने सोचा था, ये ड्रीम किया था, ऐसे किया था, वो किया था, कुछ नहीं हो रहा है, उस हिसाब से चल नहीं रहा है, तो इस फैमिली का क्या लाभ है ना, संसार संसार करी मिथे गए लोकाल, लाभ ना हुई लो
किंजाल,
है कि नहीं, आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो संसार संसार करके ड्रीम किया, ऐसे होगा ऐसे होगा, इस तरह से सर्व करेंगे भगवान को, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन उससे बीता गेलो काल, समय निकल के चला गया इस प्रयास में, और कुछ लाभ हुआ नहीं और जंजाली उत्पन्न हुआ है, मतलब है ना अननेसेसरी चीज। तो इस तरह से तो सर्विस हो नहीं पाएगा, तो बेटर इस संसार को त्याग करो। तो उन्होंने संसार को त्याग करके एक दिन एक मध्य रात्र में वो राजा अंग जो है वो छोड़ के राज्य को, ये जो बहुत बड़ा ओपुलेंट किंगडम छोड़ के।
तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था ना प्रभु जी,
हाँ,
तो यहाँ पे तो उनका ये जिम्मेदारी है कि वो क्वालिफाइड राजा को वहाँ पे देके जाए, वो भी तो सर्विस है उनका।
हाँ वो भी सर्विस है, और
पैसे का आविष्कार भी नहीं हुआ,
ठीक है। तो इसमें डिपेंड करता है जैसे उस समय की क्या सिचुएशन था, तो उसमें यही सिचुएशन था कि उनको है ना कोई
और
भी मंत्री था, हाँ, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी उनको क्या डिसाइड करना था, उसमें प्रायोरिटी पहले यही करना था कि कोई सर्विस हो रहा है कि नहीं उनकी लाइफ का। तो सबसे पहले ऑफकोर्स अपनी भगवान के प्रति ड्यूटीज हो रही कि नहीं, जितनी भी ड्यूटी है उसमें सबसे पहला ड्यूटी भगवान के प्रति, अगर भगवान के प्रति ड्यूटी नहीं और उसके बाद दूसरे के प्रति ड्यूटी हो, तो ये यहाँ पे रिनाउंसिएशन उन्होंने किया कि इस राज्य का ऊपर मेरा आसक्ति का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं इस तरह से फैमिली के साथ रहकर मैं आगे सर्विस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने एकदम से त्याग करके, जिस तरह से राजर्षि त्याग करके चले जाते हैं, ऐसे उन्होंने अपने राज्य को त्याग करके वो वन में चले।
मुझे डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर देन ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, ये सीखने में ज्यादा कभी कभी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी पूरी।
हाँ, तो कब तक आपको प्रयास करना और कब आपको छोड़ना, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस की जरूरत है उसको समझने के बाद। तो इसमें कहीं डिवोटीज ने कहीं प्रश्न भी पूछा है, जैसे प्रभुपाद ने काफी हद तक अपनी लाइफ में प्रयास किया, उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने त्याग किया। तो कब तक प्रयास करना और कब त्याग करना, वो फिर धीरे धीरे कृष्ण बुद्धि देंगे, है ना, आचार्य गुरु हमें बुद्धि देंगे अगर जरूरत पड़ता है छोड़ने का। तो पॉइंट ये है कि इज नॉट अटैच्ड कि अगर है तो भी कंटिन्यू करो ही करो, तो यस कि इतना हो गया। और इसमें तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि एक्चुअली दिस इज अ परफेक्शन, ऑफ कोर्स 50 इयर्स के बाद आपको वन में जाना ही है, कैसे भी हो, राज्य हो ना हो। ध्रुव महाराज के केस में भी उन्होंने, ध्रुव महाराज के पिता के लिए भी प्रभुपाद ने लिखा कि उन्होंने पुत्र को विवाह भी नहीं कराया था, उन्हें चले गए क्योंकि उनका समय हुआ, उन्हें चले गए। तो देट टेक्स प्रायोरिटी, बाकी चीज होते रहेगा, कोई ना कोई करेगा आगे जाके, इतने लोग हैं कोई ना कोई करेगा। तो उस तरह से उन्होंने जो है उसको त्याग। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि टू गिव अप इज नॉट इजी, किसी का जो फैमिली लाइफ को त्याग करना, डिटैच होना इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इस केस में वो इतना डिटैच हो गए थे कि वो छोड़ के एक दिन रात को चले गए। और फिर आगे जाके क्या हुआ, फिर अब सारे चीज जब वो चले गए तो कोई राजा नहीं है, तो राजा जब नहीं है तो सिटीजन में क्या हुए, धीरे धीरे थीप रॉग्स डकैत ये सब बढ़ने लगे। और फिर जो है वहां पे जो मिनिस्टर्स थे, जो ऋषि थे, मुनि थे, है ना, तो वो लोग उस समय क्या करते थे, राजा को हमेशा काउंसिल करते थे, हमेशा एडवाइस देते थे। तो वो लोग देखने लगे कि अरे ऐसे हो रहा है, सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने फिर देखा राजा तो है नहीं, राजा तो छोड़ के चले, तो राजा को ढूंढे भी एक्चुअली सब लोगों ने, लेकिन कोई मिला नहीं। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से तो चलेगा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि राजा को फिर है ना उनकी पुत्र को हमें राजा बना देते हैं। तो सब लोग सम्मत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है, फिर भी है ना कोई तो होना चाहिए, बिना राजा के, बिना शासन के देश जो है नहीं चल सकता। तो उन्होंने फिर सब लोगों ने मिलके जो है राजा वेन को राजा बनाया। अब उनका राजा तो इतना राज्य था, बड़ा, इतना बड़ा, इतना संपत्ति, इतना कुछ। और जैसे ही राजा वेन को राजा बना, राजा वेन राजा बना, तो उसका एट्रोसिटीज ओवर बढ़ गया, उसकी जो क्रूएलनेस और बढ़ गया। तो यही जो हम लोग पिछले बार भी चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई ऑपुलेंस अगर गलत हाथ में पड़ता है तो बहुत डेंजरस है। तो उसी तरह जब ये पावर हाँ राजा वेन के पास आया तो वो डेंजरस होने लगा कि वो इस पावर को तो उसके पावर में आने से चोर डकैत तो बंद हो गए वो तो बंद हो गए लेकिन फिर दूसरा तरह से लोगों का परेशानी शुरू हो गया। ठीक है तो फिर जो है ये जो ऋषि मुनि वो कह रहे थे देवर बिकेम मोर एंशियस कि अभी उनके उससे उनकी उससे वो सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो रही है तो देवर कंसल्टिंग। तो अब प्रभुपाद लिखते हैं कि मतलब एक तो ऋषि मुनियों को पॉलिटिकल चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए पर वो लोग जो हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको राजा बनाया तो दे आर रेस्पॉन्सिबल
लग जाए
They are not interested in political matters. पर फिर भी ये लोग इंटरेस्ट ले रहे थे पॉलिटिकल मैटर्स में although they were personally not interested. तो वो किसके लिए ले रहे थे citizens के लिए बाकी लोगों की welfare के लिए ले रहे थे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ordinary कर्मीज are busy acquiring money for sense gratification. And ordinary gyanis are socially aloof when they speculate on liberation. But actual devotees and saintly persons are always anxious to see how the people can be made happy, both materially and spiritually. So, जो actual devotee वो दूसरे के लिए सोचते हैं दूसरे का benefit के लिए सोचते हैं इसलिए वो लोग जो है उस दिशा में सोच रहे थे and they were taking actions, जो required action है उस समय। इस तरह से हम देखते हैं प्रभुपाद भी जो है वो डिसाइपल्स का मैरिज के लिए भी वो खुद एफर्ट लेते थे और उनको मैरिज कराते थे जिससे एक प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी इज नॉट इंटरेस्टेड पर उनको ये करना पड़ता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है तो उसमें एक वो आता है कि जब बहन का अत्याचार चल रहा था तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है व्हेन ए फायर ब्लेजेस ऑन बोथ एंड्स ऑफ ए लॉग एक लकड़ी का दोनों साइड से अगर आग जल रहा है द एंड्स इन द मिडल आर इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन सिमिलरली एट दैट टाइम द पीपल इन जनरल वेयर इन ए डेंजरस पोजिशन ड्यू टू एन इररेस्पॉन्सिबल किंग ऑन वन साइड एंड थीव्स एंड रॉग्स ऑन द अदर। एक साइड में थीव्स एंड रॉग्स थे एक साइड से इस तरह से ही रेस्पॉन्सिबल किंग
तो बंद हो गए।
हाँ
क्वेश्चन तो ये है उनको छोड़ देंगे तो वो लोग
मेरा ये क्वेश्चन में कि आपका थीव्स एंड रॉक्स तो बंद हो गया तो थीव्स एंड रॉक्स को बंद हो गया लेकिन अभी तो ये है तो जैसे चीटी एक साइड में थीव्स एंड रॉक्स है एक दोनों साइड से आग है अब इस आग देख के वो भागने लगा इधर तो बचेंगे और जाके देखे इधर भी आग है तो थीव्स एंड रॉक्स थे थीव्स एंड रॉक्स से बचने के लिए किंग को रखा ताकि थीव्स एंड रॉक्स बंद हो गया अभी दूसरे साइड में आ रहा है अब इस साइड भी जो है वो क्या है ये आग है ना ये भी क्रूएल है तो अब इससे बचने के लिए उधर जाएंगे उसको हटाएंगे तो फिर थीव्स एंड रॉक्स है और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास तो इस तरह से दोनों साइड से वो क्या हो रहे थे दे वर सफर। ठीक है तो अब जो है जो ऋषियों ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए हमें साइलेंटली रहना चाहिए या हमें एक्शन लेना चाहिए तो ये चीज जो है ना कर्म बहुत सटल है ना और उसको सोचना क्योंकि हम सब 15 मिनट सो जाए सब लोग आराम से सोते 15 मिनट फिर जागेंगे फिर प्रवास करेंगे क्या आइडिया है, ठीक है,
मार्वेलस आइडिया है।
लास्ट शुरू करके 15 मिनट हो जाते हाँ। तो आनंद को बता रहे थे बहुत सुंदर, कहीं वो कोर्स होते हैं ना इस्कॉन में भी, तो बोलते इस्कॉन में दो फॉर्मूला है, एक सोने का फॉर्मूला, एक जगने का फॉर्मूला। मालूम है आप सबको दो फॉर्मूला, किसको किसको मालूम है? अरे आपको नहीं मालूम, बता जरा आप भक्ति मार्ग को, आप बताओ कौन सा सोने का फॉर्मूला कौन सा? रीजन मतलब ये सोना है हमें सबको, और जगने का कौन सा? वहाँ गोविंद है। ओके, तो इस तरह अब वो लोग सोचने लगे, हरे कृष्ण में
बोला, जपा में भी नींद आता है,
नींद आते हैं। तो उसमें कोई मंत्र हो नहीं रहा ना, तो कोई मतलब बोल नहीं रहा है आपको, है ना?
लेकिन यहाँ पे बोलते जी बोलेंगे तो, भगवते सोने का टाइम हो गया।
तो वो लोग सोच रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए, और ये जो है ये सटल लॉ ऑफ एक्शन, हमें बहुत सबको केयरफुल रहना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, जब आप किसी भी रेस्पॉन्सिबल पोजिशन में होते हैं तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे को कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक डिवोटी का एक बहुत सुंदर प्रेयर, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो भूल गया, उसमें ये था कि हे कृष्णा गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स व्हिच आई मस्ट, है ना, गिव मी द स्ट्रेंथ, कि जो चीज खराब चल रहा है, जिस सिचुएशन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है और मेरा करना मेरा कर्तव्य है, तो उसको करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत तपस्या करने की जरूरत है, तो भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। फिर ओ कृष्णा गिव मी द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट दोज थिंग्स व्हिच आई कैनॉट चेंज एंड आई हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, ऑल्दो आई वांट टू चेंज इट बट आई कैनॉट चेंज इट एंड आई हैव टू टॉलरेट इट, सो गिव मी द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट, है कि नहीं? एक वैसे होता है हमारे मन से इच्छा से नहीं है तो हम नहीं टॉलरेट कर पाते। तो ये दो प्रेयर्स, उसका थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सुंदर है, ओ कृष्णा गिव मी द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि कितना मुझे चेंज करना है, करने का शक्ति मुझे होना चाहिए, और कितना ना चेंज करके टॉलरेट करने का शक्ति होनी चाहिए, तो उसको समझना के लिए। तो ऐसा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम कि किस चीज को, जैसे यहाँ पे किंग अंग के लिए भी था, उन्होंने चेंज करने का प्रयास किया, फिर देखा नहीं, फिर देन यू टॉलरेट, यू एक्सेप्ट इट कि दिस इज मर्सी ऑफ कृष्ण।
क्यों डिफिकल्ट है?
क्या
क्यों डिफिकल्ट है?
क्या चीज,
क्या चेंज करना है जानना, या क्या चेंज नहीं करना है जानना, क्यों डिफिकल्ट?
बिकॉज कोई क्लियर कट वो नहीं है, है ना, मेजरमेंट नहीं,
फॉर्मूला नहीं,
हाँ फॉर्मूला नहीं, मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम ऋषि हैं, हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं है, कि जैसे चल रहे चल रहे दो हमारा अपना वो करते हैं कार्य, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने ही उनको अपॉइंट किया था, अब हमने ही जनता को दिया था कि ये अच्छा व्यक्ति होगा, ही विल डू समथिंग गुड, और अब हम बैक आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देट इज व्हाट दे वर थिंकिंग, मतलब हम फिर आइदर हम टॉलरेट करें उसको, कंटिन्यू करें, या हम उसमें कुछ एक्शन लें। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जाकर उनसे कुछ, वो भी सोचा कि ऐसे तो राजा सही नहीं है, हमें उनको हटा देना चाहिए। फिर वो सोच, नहीं, हटाने से पहले हमें उसको एडवाइस देना चाहिए, तो कोई भी कितना भी खराब हो, आप एकदम से उनको जो है ना, उसका अपॉर्चुनिटी ना खत्म नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ न कुछ उनको मौका देना चाहिए। तो इसलिए जो है, कोई कितना भी मान लीजिए कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ कर दिया, यू शुड, है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग है, हो सकता है मिस्टेक, समझाने का प्रयास करना, तो वो गए हैं वहां पे। हाँ,
बेसिकली
इसीलिए तो प्रेयर कृष्ण गिव मी इंटेलिजेंस, कृष्ण गिव मी इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड बिटवीन द बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही आता है जो रूप गोस्वामी कहते हैं सारे प्रिंसिपल का रूट क्या है, जो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो अगर हम कृष्ण को याद करते रहेंगे और विद द ऑब्जेक्टिव टू सर्व कृष्ण ओनली एंड सर्व द डिवोटी ओनली, तो काफी हद तक वो सॉल्व हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि उस डिवोटी को बुरा नहीं लगता है और हमें भी पता लग जाता है कि ये चीज जो है ये कृष्ण को प्रसन्न देगा या नहीं देगा। ये एक ही क्वेश्चन है, आप कोई भी चीज को जज करने से पहले क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मैं इस पे उनको करेक्ट करने जा रहा हूं क्या इट विल प्लीज कृष्ण और नॉट। अगर आपको आंसर यस आता है तो आप प्रेस कर सकते, आपको लगता है नहीं एक वन इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
द्वंद्व
डबल माइंड प्रिपेयर टू कृष्ण तो गिव सम इंडिकेशन
मिल जाता है
कुछ डिवोटी जो है पर्ची रखते
हैं। टेक टाइम टू डिसाइड, हाँ चैंट मोर राउंड्स, टेक टाइम टू डिसाइड है ना। तो फिर माइंड जब प्यूरिफाई होता है तो सत्वगुण में आता है तो अच्छा डिसीजन ले पाता है, रजोगुण में रहेंगे तो गलत डिसीजन। बहुत है और इसीलिए तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी में ही हमारा जो भक्ति जो है वो नरिश करता है, क्योंकि हम जो भी थ्योरी सीख रहे हैं उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है, तभी हम इस चीज का जो सटलनेस या डिफिकल्टी कितना डिफिकल्ट है उसको हम समझ पाते हैं, एटलीस्ट रियलाइज कर पाते कि ये जो भक्ति का जो प्रिंसिपल्स है इट्स हाउ डिफिकल्ट टू फॉलो। अगर करेंगे ही नहीं, एसोसिएशन में रहेंगे ही नहीं, इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उसके कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा हमारे लाइफ में, इट विल बी जस्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट विल नॉट बी अ नॉलेज, है ना। तो उस तरह से हर केस में जैसे मान लो हम लोग यात्रा में जाते हैं या कुछ, तो बेस में भी रूल्स रेगुलेशन होती है, है ना, यात्रा में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, पर कितना स्ट्रिक्ट वो भी मैं डिपेंड करता है कि है ना, वी कैनॉट बी रोबोट क्या स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। एक डिवोटी का तबियत खराब हो गया तो वी डू नॉट केयर, मतलब है ना हम जस्ट रूल्स पे ही चलेंगे, वी कैनॉट डू लाइक दैट, दैट विल नॉट मै नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्ण। तो कितना स्ट्रिक्ट होना है, कितना फ्लेक्सीबल होना है ना, वो भी जो है डिफिकल्ट समझना। सो इट हैज टू बी काइंड ऑफ फुल ऑफ लव, लव शुड बी इन द अंडरलाइन, है ना, थिंग ठीक है।
तो वो क्लियर हेडेडनेस जो व्हाट टू डू व्हाट टू डू,
हाँ वो आपका एक्सपीरियंस ही आएगा और आपका एडवांसमेंट से आएगा, भक्ति में एडवांसमेंट आएगा ठीक है, अदरवाइज और डिफिकल्ट है। तो वो लोग फिर करके वो लोग गए और उनको एडवाइस दिए, जब एडवाइस दिए तो वो माने नहीं, तो जनरली जो असुर होते हैं या जो इस तरह नॉन डिवोटी होते हैं वो कभी जनरली एडवाइस स्वीकार नहीं करते इतना इजी, है ना। तो ज्यादा उनके ऊपर चढ़ गए, उनको डांटने लगे कि आपको कुछ नहीं पता रिलीजन के बारे में, है ना, वो अपने आप को भगवान ही मानने लगे, है ना, क्यों ऐसे ही बताया जाता है किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, पर वो उसको थियोरिटिकली ले लेकिन बिकॉज आई एम ए किंग सो आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जिसे गुरु है इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, बट ही नेवर थिंक्स ही है ना कि ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ही इज he is to be worshipped like a god, but he never thinks that he should be worshipped by. If he thinks he should be worshipped by like a god, then he is not a god. Prabhupada kehte hain usi tarah ek raja is a representative of god, but wo agar sochte hain ki main hi guru god hu, to fir he is no more representative of god, hai na. Aur usi tarah wahan pe fir वो समझ नहीं पा रहे थे अहंकार से आकर कि हम किसको बोल रहे हैं. इन्होंने ही मुझे राजा बनाया, इन्होंने ही मुझे पावर दिया. अब जिन्होंने पावर दिया हम उनके ऊपर ही मैं जो है हो रहे हैं, उनके ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं एक तरह से. तो वो कथा याद आता है, कौन सा कथा, पुनः मसीह का बाबा, जिसमें एक ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप ये बन जाओ, चूहा बन जाओ, फिर चूहा से आप बिल्ली बन जाओ, बिल्ली से कुत्ता बन जाओ, कुत्ता से शेर बन जाओ, और फिर शेर आके उसको खाने लगते हैं.
उसको खाने लगते
हैं. हाँ, तो प्रभुपाद उस समय कहते हैं कि ही शुड हैव अंडरस्टूड कि इफ दे हैड अ पावर टू ब्रिंग मी फ्रॉम रेट टू माउस टू लायन, देन ही हैज ए पावर टू ब्रिंग मी बैक टू माउस ऑल्सो फॉरवर्ड. तो उसी तरह बाई मर्सी ऑफ गुरु, बाई मर्सी ऑफ कृष्णा वी गेट समथिंग. सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि इफ दे हैड ए पावर टू ब्रिंग मी अप टू दिस लेवल, दे हैव ए पावर टू टेक मी बैक ऑल्सो टू दैट पोजिशन. सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दे आर पोजिशन, है ना. तो इसीलिए फिर आगे जाके वो लोग उनको बिना किसी वेपन से उनको मार दिया, इनका उतना शक्ति होता था. ये बताया जाता है कि आगे पहले जमाने में दो लोगों का बहुत शक्ति होते थे, है ना, उनकी कर्ष की बहुत शक्ति होती थी. एक तो ब्राह्मण
पतिव्रतास्त्री,
पतिव्रत स्त्री चेष्टो में, तो वो अगर कभी किसी को कुछ साथ दे देते तो तुरंत नो डिले डिले नहीं होता, तो उनका बध हो गया. ठीक है, तो उसके आगे फिर कथा काफी लंबा है. तो फिर पितु महाराज का जन्म होता है, तो भी वो लोग मिलके पितु महाराज के जन्म पृथ्वी महाराज को जन्म देते हैं. तो वहां पे वो पृथ्वी महाराज भगवान की शक्तिविश बताते हैं, और पृथ्वी महाराज दो, एक मतलब मेल और एक फीमेल का उत्पन्न होता है. तो पृथ्वी महाराज और जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून की एक्सपेंशन अर्ची उनके नाम, तो उनका जन्म होते हैं. तो वो भी उनकी बॉडी को चर्निंग करके होता है. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, वो भी साइंस है. तो कह रहे थे कि वो वेन को वापस नहीं ला पाते थे क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए, बट उनकी जो बॉडी की जो सेल्स है दैट इज यूज टू गिव अनदर बॉडी, टू क्रिएट अनदर बॉडी, अनदर प्लेस फॉर रेसिडेंस ऑफ अनदर सोल, उस तरह से. फिर पृथु महाराज का जन्म हुआ, और फिर पृथु महाराज को हाँ दोनों उत्पन्न, साइड बाई साइड नहीं. तो इस प्रकार से फिर
इसमें एक था कि जैसे पृथ्वी महाराज जी का जन्म हुआ,
हाँ,
तो वो डायरेक्ट इनकार्नेशन तो नहीं है,
हाँ, लेकिन शक्ता वैश्य,
तो वो फर्क थोड़ा समझ में आता है.
शक्ति आवेश,
वो बेसिकली बताते हैं कि वो जीव है, शक्ता वैश्य अवतार में जीव ही होते हैं, पर भगवान बहुत शक्ति प्रदान कर देते हैं. तो वो जीव ऐसे कार्य कर पाता है जो एक साधारण जीव नहीं कर पाता है, वो जो कृष्ण भगवान कर पाते हैं ऐसे ही कार्य वो कर पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति भगवान ने स्पेशली उस स्पेशल जीव को दे दी.
और इनकार्नेशन वो
तो भगवान के अपने एक्सपेंशन होता है,
उनका शरीर स्पिरिचुअल होता है इनकार्नेशन. हाँ,
ऐसे ही मान सकते, है ना. तो शक्तिवेश अवतार में जीव होते हैं, ठीक है. तो जीव में भगवान इतना ज्यादा शक्ति दे देते हैं कि वो भगवान जैसे कार्य कर पाते, ठीक है.
जी आपने क्या बताया,
कैसे
पैदा हुए?
इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब पृथ्वी महाराज की एक्चुअली काफी लंबा स्टोरी है, उसको आप पढ़िएगा आप लोग, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको कि कैसे पृथ्वी महाराज को सबसे पहले ना जो है कई लोग उनको जब जस्ट जन्म हुए तो उनको ग्लोरीफाई करने लगे कई लोग, है ना, तो वहाँ पे जो ऋषि थे उनको ग्लोरीफाई करने लगे. तो उसमें आता है कि है ना पृथ्वी महाराज उनको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं और बोलते हैं कि आप जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो अभी मैं ऐसा नहीं हूँ. उनको जब ग्लोरीफाई कर रहे थे है ना, कई ऋषि मुनि गंधर्व लोग से आए थे तो वो लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, तो पृथ्वी महाराज वहां पे उनको रोकते हैं, इंटरप्ट करते हैं और करके वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप अभी कह रहे हैं, मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा क्या नहीं वो डिफरेंट चीज है, पर अभी मैं ऐसा नहीं हूँ. और फिर वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति होगा कि जो इस तरह से ओवर ग्लोरिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगा. और फिर वो बताते हैं कि वो एक्चुअली वो मूर्ख व्यक्ति जानता नहीं है कि जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है वो जो वर्ड्स है वो एक्चुअली उसका इंसल्ट है. तो हम लोग ने कई बार इसको सुना है कि एक्सेगरेशन ऑफ ग्लोरिफिकेशन इज एन इंसल्ट, पर वो कहाँ पे, यहाँ पे पृथ्वी महाराज की स्टोरी में कि वो कहते हैं कि अधिक, तो वो कहते हैं कि कौन होगा इंटरेस्टेड कि अपनी ग्लोरीज का इस तरह से सुनने का वो करेगा. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना कि हमारा ग्लोरिफिकेशन कोई कर रहा है और हम उसको रुके और हम ऑनेस्ट रहे और रह के उसको हम जिसको देखिए ये भी एक चैलेंज है, वो है ना दुविधा है कि डिवोटीज तो ग्लोरीफाई आपको करेंगे ही, आपकी बर्थडे होगा तो आपको ग्लोरीफाई करेंगे डिवोटीज, ठीक है. तो लेकिन कई लोग होते हैं ऑफ कोर्स, पहला पॉइंट तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें, हाँ ऑनेस्ट ग्लोरीफिकेशन ही करना चाहिए है ना, एक्सेगरेशन नहीं करना चाहिए. एक्सेगरेशन ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं एक्सेगरेशन कर रहा हूँ वो मतलब उस डिवोटी के लिए हंसी का बात बन जाएगा, इट विल बी ए काइंड ऑफ जोक, तो इट विल बी एन इंसल्ट, उनको नहीं करना. अगर ऑनेस्ट भी कर रहा है तो ऑनेस्ट में भी उसमें एक्चुअली एक्सप्लेनेशन करते हैं महाराज कि अगर ऑनेस्ट भी है तो भी हमें क्या सोचना चाहिए कि एक्चुअली किसकी ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन. अगर जो कुछ भी मैं भी अगर कर भी लिया मैंने तो भी कृष्ण की कृपा से ही कर पाया, कृष्ण की शक्ति से ही कर पाया. इस नॉलेज अगर उसके पास होगा एंड ही विल नॉट रिलिश द ग्लोरिफिकेशन, ये पॉइंट. अगर कोई ऑनेस्ट ग्लोरिफिकेशन करे आप सुन रहे हैं पर आपको अंदर अंदर उसका खुशी नहीं महसूस हो रही है अगर, देन इट इज गुड. अगर आप अंदर अंदर आपको खुशी महसूस हो रही है कि यस आई हैव डन दिस, यस आई हैव डन दिस वेरी नाइस, है ना, बाकी डिवोटी ऑब्जर्व कर रहे हैं गुड,
बाकी डिवोटी ऑब्जर्व कर रहे हैं गुड,
तो और आप सच में सोचने लगा कि हाँ वो जैसे कह रहे हैं सारे, है ना, क्योंकि वो तो आपकी बर्थडे है तो अभी आपका ही ग्लोरिफिकेशन कर, बाकी सब डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन अभी हो नहीं रहा, ठीक है. तो हम सोचने लगे कि बाकी लोगों का कुछ सच गुण नहीं है, मेरा ही सबसे ज्यादा है, तो वो फिर गलत हो जाता है ना. तो ये सारे चीज जो है बात बताते कैसे करना चाहिए, उसको हमें ऐसे है ना ऑफर कर देना चाहिए, है ना, आगे जाके सीनियर्स को या है ना स्पिरिचुअल मास्टर को, कि जो भी है जो कुछ भी है आप भगवान के लिए गुरु के कारण ही है.
लेकिन ऐसे सिचुएशन में कोशिश करने पर भी दिखता नहीं है कि किस तरीके से वो एक्टिविटी मैंने नहीं किया वो कृष्ण ने किया, तो वो प्रैक्टिकली दिखता नहीं है कि लगता है कि ये तो मैंने ही तो किया है, वो सही बोल रहा है.
हीट आएगा, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका कॉन्शियसनेस है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते।
शरीर भी भगवान ने दिया है ना,
ठीक है, ओके, कोशिश करो। तो जो जितना भी ग्लोरीफाई करेगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा तो आपको समझना चाहिए वो आपका ज्यादा फ्रेंड है, क्योंकि वो आपका ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, आपका क्रिटिसाइज कर रहा है। दैट इट हेल्प्स यू टू रिमेन इन ऑन ग्राउंड, नॉट टू बी पफ्ड अप, है ना। तो बात लिखते हैं पफ्ड अप पफ्ड अप पफ्ड अप, फिर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बर्थडे मतलब पंप हो रहे,
पंपिंग
पंपिंग होता
है, अंदर नहीं रह गया, बाहर लात मारते हैं, लोग सही करते हैं।
फिर हम ग्लोरीफाई क्यों करते हैं किसी को?
हाँ, वो आपकी बेनिफिट के लिए नहीं, वो दूसरे डिवोटी के लिए, जो ग्लोरीफाई कर रहा है उसकी बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसने किसी न किसी रूप से आपको ऑफेंड किया होगा, ये कुछ किया, तो वो चाह रहा है कि मेरा ही खत्म हो जाए, मेरा भक्ति में कोई बाधा ना रहे, आपका ग्लोरीफाई कर रहा, ठीक है, उससे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, आपका नहीं।
तो बर्थडे में सबका प्यूरिफिकेशन,
बिल्कुल।
लेकिन वो एटिकेट भी तो है प्रभु जी की, हमारे प्रति इतना उन्होंने अच्छा किया, इतना अच्छा एक्सिस्टेंस है, तो हमें वो बताना चाहिए, एटिकेट भी नहीं है।
हाँ, तो वही है एटिकेट कि आपको ग्लोरिफिकेशन का मौका मिल रहा है, तो यू बिकम प्यूरिफाइड, आप ग्लोरिफाई करते हैं।
लेकिन हम ये सोच के जाते हैं कि आज तो अच्छा प्यूरिफिकेशन करूंगा मैं,
उसको सर्विंग क्या है, आप किसी को सर्व कर रहे हैं, वो भी तो आपका प्यूरिफिकेशन ही है। यू वॉन्ट टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू प्लीज कृष्ण, दोनों चीजें, आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू गेटिंग बेनिफिटेड, है ना। तो बर्थडे बॉय उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, उनके डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। अब ये प्रथा है,
कृष्ण की कृपा है ना,
ठीक है। टाइम हो गया, देखो टाइम हो गया, तो फिर आगे क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है इस तरह से ग्लोरिफिकेशन जो है, लेकिन उसके आगे फिर वो लोग प्रणाम करके जो है आगे फिर ग्लोरीफाई करते होंगे, और बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन कि जिस तरह से, मतलब पृथ्वी महाराज कैसे राजा होंगे, बहुत अच्छा से कि किस तरह से वो प्रोटेक्ट करेंगे अपनी सिटीजन्स को, तो जिस तरह से सूर्य कोई पार्शियलिटी नहीं करता, अंटार्कटिका में भी जाके वो जो है वो रश्मि देते हैं, उसी तरह पृथ्वी महाराज सारे जो है जनता को वो प्रोवाइड करेंगे, तो है ना, अगर कोई भी जनता का किसी का भी परेशानी है तो पृथ्वी महाराज है ना का इतना क्षमता होगा कि उनकी सारे परेशानियों दूर कर सकेंगे। तो इस तरह से इसमें इतना कि पृथ्वी महाराज ऐसे होंगे जो अपनी अपनी पुत्र और अपनी शत्रु की पुत्र में कोई भेद नहीं देंगे, अगर अपनी पुत्र दंडनीय है तो उनको दंड देंगे, और शत्रु की पुत्र अगर दंडनीय नहीं है अवॉइडेबल है तो उनको अवॉइड करेंगे। इस तरह से इतना सुंदर ढंग से एक चीज के साथ उनका कंपेयर करते गए कि पृथ्वी महाराज ऐसे रूलर होंगे, ऐसे वो प्रोटेक्ट करेंगे कि उनके राज्य में किसी सिटीजन को कोई भय कोई परेशानी कोई चीज नहीं होगी। तो जब पढ़ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे श्रील प्रभुपाद की भी जो राज्य है एक तरह से उसमें इतना प्रभुपाद की क्वालिटीज था, एबिलिटी था, कि उस समय कितना भी डेंजर आता था डिवोटीज को, कुछ भी प्रभुपाद जस्ट बोलते थे चैंट हरे कृष्ण एवरीथिंग विल बी फाइन, कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू, एंड कृष्ण वुड प्रोटेक्ट करते थे, और किसी भी तरह से परेशानी भक्तों को नहीं होता था, किसी को जिसे सब भक्तों ने कितना सब जॉब छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया लेकिन फिर भी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा, प्रसादम प्रॉपर जहाँ पे जो चाहिए था एवरीथिंग वाज देयर, है ना, और इतना अच्छा तरह से, और वो भी था कि कितना स्ट्रिक्ट भी होंगे और कितना मर्सीफुल भी होंगे, है ना। तो उस तरह से प्रभुपाद भी थे ना, कहीं स्ट्रिक्ट भी थे मर्सीफुल भी थे, एवरीवन वाज हैप्पी, इतना बड़ा राज्य था प्रभुपाद की, इतना बड़ा, है ना, लेकिन हर कोई वहां वाज फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज प्रभुपाद हैड पावर, कृष्ण का पावर था उनके पास। उसी तरह तो आइडियल किंग को कैसे होना चाहिए था वो पृथ्वी महाराज की उसमें ग्लोरिफिकेशन में है कि किस तरह से वो राज्य करेंगे, किस तरह से वो लीड करेंगे, देयर इज अ वेरी एग्जांपल, जैसे कोई भी लीडरशिप उनका बात होती है तो एक लीडर को कैसे होना चाहिए, स्पीति महाराज की उससे आप समझ सकते, एक लीडर का क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक किंग का या एक कोई भी जो नेता या जो भी मेन है, हेड है, लीडर है, वो तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो ऐसे है, उसके आगे फिर पिथु महाराज फिर आगे जाके उन्होंने उन्होंने जैसे ही फिर राज्य में उन्होंने कोरोनेशन हुआ उनका पिथु महाराज, तो उनकी उसका इतना वर्णन नहीं है, तो शायद थी ऑलरेडी ग्रोन अप, इज रेडी फॉर एंथ्रोन। तो उन्होंने अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम था सिटीजन मतलब का राज्य में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, आप पृथ्वी महाराज आए उसको सॉल्व करने के लिए एक तरह से, है ना, सुन के शक्ति जो भी है, अब उनको इतना बड़ा जिम्मेदारी है एक तरह से लेना। तो जैसे उन्होंने अपने राज्य में बैठा तो कंप्लेन शुरू हो गई एक तरह से, है ना। क्या कंप्लेन? स्कैर्सिटी ऑफ फूड। तो ये सारे प्रॉब्लम तो पहले क्रिएट करके गए वो, है ना, क्योंकि वो आने से सारे प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो गया एकदम से, प्रॉब्लम तो उनको सहन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बेस में इंचार्ज बन गए, है ना, उससे पहले सारे उल्टा सीधा होके गया, तो आप बनने से ही ऐसे नहीं हो जाएगा कि अरे है ना सब ठीक हो जाएगा, आपको सहन करना पड़ेगा, चीज को देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम, अच्छा क्या प्रॉब्लम। आपने जैसे ही बेस में मान लो आज से आपने बाहर लिया आगे की प्रभु जी इतना कर्जा है आप दीजिए पैसा आप लोगों ने लिया, तो मैंने तो नहीं लिया, नहीं नहीं आपके बेस से इतना लेके गया, तो आप क्या करोगे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने जिस फॉर्म में रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है आपने प्रॉब्लम्स को भी लिया है कि नहीं। तो पृथ्वी महाराज के साथ भी ऐसी हुआ, उन्होंने जब लिया उनको राज्य मिला साथ में प्रॉब्लम्स भी मिला, और ये दिखाई कि शुरू में ही ऐसे नहीं, तो जनरली ऐसा होता है कि आपको कोई भी चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप ऐसे नहीं, हर चीज बिल्कुल रेडीमेड मिल रहा है एकदम, आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही लेते हो देखते हो अरे इतने सारे प्रॉब्लम्स है उसमें, पहले तो प्रॉब्लम्स को क्लीन अप करो फिर आप नेक्स्ट कुछ प्लान कर सकते हो। तो उनका भी ऐसे जैसे बैठा स्कैर्सिटी शुरू हो गया और सिटीजन आ गए कि अगर आप राजा हैं तो आप सॉल्व कीजिए हमारा। तो उन्होंने शांति से उसको पहले विचार किया कि क्या कारण क्या है, स्कैर्सिटी के क्या कारण है। फिर उन्होंने देखा कि सिटीजन सारे वो कर रहे हैं कि धर्म का नियम पालन कर रहे हैं क्या, सबसे पूछताछ किया, देखा हाँ धर्म के नियम पालन कर रहे हैं, फिर तो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने फिर पृथ्वी से पूछने लगे, फिर वो पृथ्वी को सिर्फ ऊपर क्रोधित हुए कि आप क्यों नहीं अन्न दे रहे। फिर पृथ्वी से कन्वर्सेशन हो गया, फिर पृथ्वी कहते हैं कि पृथ्वी भयभीत हो गए और उन्हें गाय के रूप धारण करके आया, और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि जनता जो है वो अधर्म कर रहे थे, धर्म का नियम पालन नहीं कर रहे थे कई साल तक, तो मैंने सारे जो है वो चीज छुपा लिया था अपने अंदर, और इतना दिन से छुपे हुए थे तो एक तरह से सड़ गए वो सारे बीज, अब वो निकल नहीं सकता, अब नहीं आ सकता। उसके आने का एक ही तरीका है सिर्फ, क्या तरीका पार्थवान को बताओ? हाँ, उसको दूध के रूप में निकलना होगा, और वो आने के लिए उसके लिए एक क्या चाहिए, अपने आप दूध नहीं निकलता है ना, उसके लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जो उस फोर्स की फोर्स से ही वो चीज निकाल सकता है, और वो फोर्स क्या है, प्रेम की फोर्स होनी चाहिए। तो वो बत्स के प्रति जब फोर्स प्रेम होता है, बत्सल रस का होता है, तो बछड़े को देख के जो गाय को होता है तभी जाके वो वहां निकल के आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर उस आप करिए ऐसे व्यवस्था कीजिए। तो फिर बताते हैं कि तो उससे फिर और भी लोग समझ गए यार पृथ्वी से जो है और भी बहुत कुछ निकाल सकता है ना, हम बछड़े अगर लेके आए सही सूटेबल बछड़े, तो बछड़े होना चाहिए और मिल्कमैन होना चाहिए और एक पॉट होना चाहिए जिसमें रखने का। तो फिर पहला मिल्कमैन कौन हुए? पृथ्वी महाराज। और बच रहे शायद स्वयंभू मनु को वो लेके आए हैं, जिनसे पृथ्वी से पृथ्वी का बहुत प्रेम था, और फिर जो है पृथ्वी का प्रेम हुआ और फिर सारे जो है ये जो अन्न है वो दूध के रूप में प्रकट होने लगे और पट शायद पृथ्वी महाराज का हाथ था। हाँ तो एक हाथ है कि नहीं, तो इस तरह से फिर हाँ एक गाय जो है बिना बछड़े के
रूप ले लिया,
स्वयंभू मनु को बुलाया ना,
रूप ले
हाँ स्वयंभू मनु को बुलाया कि बछड़े के जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो पृथ्वी एक माँ की तरह है और स्वयंभू मनु पुत्र की तरह है उनके, और उसी तरह से उनका हाँ पृथ्वी को जो है वो प्रेम हुआ हाँ कि अरे वो कैसे भूखे रह सकते हैं हाँ? तो हाँ? मेरा अंदर छुपा हुआ है अन्न, तो एकदम से अन्न निकल कर आया। पृथ्वी शब्द का हाँ वो पृथ्वी महाराज की पुत्री है, पुत्री ऐसे भी मान लो पृथ्वी महाराज भगवान ही तो है एक तरह से, तो भगवान की पुत्री तो
भगवान पत्नी भी
हाँ, लेकिन शायद यहाँ पे तो शायद एनीवे मतलब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन शायद उसी से पृथ्वी महाराज के उसकी बात से ही नाम हुआ है, और पृथ्वी का नाम और एक नाम वसुंधरा भी है, तो वसुंधरा धरा मतलब कंटेनर है ना, और वसु मतलब धन, तो पृथ्वी के अंदर इतना धन है कि जिसको जो चाहिए वो मिल सकता। तो उसके बाद उनको देख के पृथ्वी महाराज को देख के बाकी और भी लोग आने लगे, गंधर्व लोग आने लगे, वो तो आने लगे है ना, तो उनको अलग अलग जिनको जो चाहिए वो मिलते चले गए, तो इस तरह से पृथ्वी का दोहन हुआ ना?
तो अभी यहाँ दोहन हो गया, तो जो आया तो एसेंस के रूप में दूध के रूप में आया था, तो फिर उसे अनाज द्वारा उत्पन्न कैसे होगा, तो आया पी लिए पसंद आया,
फल चलाया ना
नहीं ना, उसी से बीज सारे बीज आए है ना, जो अन्न की सीड्स
जो होता है वो बने चढ़ गया, तो अब जो आ रहा है उनके एसेंस आया ना, क्योंकि ग्रेन ही आया,
ग्रेन ही आया ना, दूध जैसा दूध के साथ एलिगरेशन है वो, दूध के साथ कंपेयर किया गया तभी पृथ्वी से वो निकले हैं, तो पृथ्वी से निकलेंगे कैसे, इसी अनाज के रूप में ही निकलेंगे और फिर फ्लरिश होने लगे सारे जगह पे, अन्न की कभी कमी नहीं रहेगा।
तो पृथ्वी महाराज फिर क्या मतलब अगर अन्न
ये थोड़ा सा आप लिमिटेड इंटेलिजेंस से मत सोचो उसको, कि पृथ्वी महाराज के पास ये शक्ति था कि वो उनके हाथ भी जो है ना एक तरह से उस चीज को ग्रहण करने के लिए कोई जगह होना चाहिए कोई है ना, तो उसको ग्रहण करके वो डिस्क्रिप्शन नहीं है बेसिकली, कैसे कहीं भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जो हम अभी हो सकता है सोच नहीं सकेंगे, पर मेन पॉइंट जो है पृथ्वी ने डिलीवर किया, जो उन्होंने छुपा के रखा था उसको डिलीवर किया फॉर द कंजम्पशन ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, तो उसको डिलीवर करने के लिए पृथ्वी को क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए सिटीजन से कि किसको ये दूध किसको पीने के लिए है, तो अगर मेरे बछड़े के लिए जिसके प्रति मेरा प्रेम है तो इट्स फाइन, अदरवाइज वो दूध आएगा ही नहीं अंदर छुप जाएगा, सर अगर सिटीजन इज गुड डिवोटीज तो वो धरती जो है खुशी खुशी सारे जो है देते हैं ग्रेन्स फ्रूट्स ये सब। उसके आगे पृथ्वी महाराज फिर वो करने लगे अश्वमेध यज्ञ करने, तो 100 हॉर्स सेक्रीफाइस, अब वो 100 हॉर्स सेक्रीफाइस सिर्फ जो है इंद्र जी ने कर रखा है ना, उस लेवल तक कोई नहीं जा सके 100 सेक्रीफाइस, तो पृथ्वी महाराज करते गए 99 तक पहुंच गए है कि नहीं, है नहीं, कितना पहुंच गया? 99. देवाशीष प्रभु कितना तक पहुंच गए? 99 है ना, ठीक है. अब 99 पहुंचने के बाद क्या होता है ना? अब उस समय इंद्र जी को लगा कि अब तो मेरा ही पोजीशन आने वाला है, लेने वाले हो. तो उस समय फिर वो आ गया. अब क्या कर सकते? तो देखिए इंद्र जी आगे, फिर वो घोड़ा चुरा लेते हैं उनका.
देवराज है फिर ऐसे कैसे हो?
तो इसीलिए तो उस समय जो बताए थे कि शिव जी को जो है एक तरह से शाप मिला. इट वॉज ए काइंड ऑफ डिसगाइज, है ना, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज. तो ये इंद्र जी का ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, है ना, होते रहते हैं. जिनका पास इतना पावरफुल पावरफुल पोजिशन होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है.
क्या कि कोई भी सब कर लिया वो तो तुरंत उनको